ચલાઈ છે ત્યારે માર્ચ 1967.
ઓમ શાંતિ. The Vani being narrated was of 11th March
1967.
And the topic being discussed in the end of the second page was
Yadav, Kaurav aur Pandav. Tino hi is yuddha mein maujood hai.
The Yadavas, meaning the descendants of Yadu. The Kauravas, meaning the descendants of Kuru, and the Pandavas. All the three armies are present in this battle.
Season ki baat hai.
Of which year is this topic?
67 ki baat bataye. Kya?
It was said about 1967. What?
Us samay bhi Yadav, Kaurav aur Pandav tino senaye isi siddhasthan mein maujood hai.
At that time also, all the three armies, the Yadavas, the Kauravas and the Pandavas were present in the battlefield. Third page of the Vani of the
11-367.
The residents of Europe are called the Yadavas. The residents of which place? Student. The residents of Europe. The residents of Yurup.
Rup kahe ka hota hai?
What has Rup? That is features.
Atma ka Rup hota hai ya sharir ka Rup hota hai?
Does the soul have features or does the body have features? Everyone said the body.
Rup, sarup, kurup to sharir ka hota hai.
It is the body that has features, form and ugliness.
Atma ka rup dekhne mein aata hi nahi.
The features of the soul cannot be seen at all.
Mana Yadav vasi hue pure deh abhimani.
It means that the Yadav people are completely body conscious.
Aur Bharat vasiyon ko Kaurav bhi kaha jata hai.
And the residents of Bharat are called the Kauravas.
Kankivasi? Bharatvasi.
The residents of which place? The residents of Bharat, that is India.
Pandav bhi hai Bharatvasi.
The Pandavas are also the residents of Bharat.
Pandav kise kaha jata hai?
Who are called the Pandavas?
Panda ki aulad, Pandav.
The children of Panda, meaning the guide, are the Pandavas.
Pandayati, arthat le jata hai. Unchi stage mein.
Pandayati means he takes us in a high stage.
Ek kinare le jata hai.
He takes us to the destination.
To use kehte hai Pandav, Pati.
So he is called Pandav Pati, meaning the protector of the Pandavas.
Aur unke bachchon ko kehte hain Pandav.
And his children are called the Pandavas.
Bharat mein Kaurav bhi.
There are also the Kauravas in Bharat.
Unka naam Kaurav kyon pada?
Why are they named Kauravas?
Pandav kya karat bhai aur Kaurav kya karat bhai?
What did the Pandavas do and what did the Kauravas do?
Pandav ne jo kiya wo panda ki mat par kiya.
Whatever the Pandavas did, they did it on the directions of panda.
Unchi se unchi panda rasta batane wala hai baap.
The highest panda who shows the path is the father.
Aur Kauravon ne jo kuch kiya kiski mat par kiya.
And whatever the Kauravas did, they did it on whose directions?
Kaurav shabd kahan se aaya?
From where did the word Kaurav originate?
Kuru desh kaha jata hai.
It is said Kuru desh, meaning the country of Kuru.
Kuru se bana Kaurav.
Kaurav is derived from Kuru.
Kuru mana? Kuch karmaro.
Kuru means do something and then die.
Kya karmaro?
What should they do and die? Someone said destruction.
Vinash karmaro.
Do the destruction and then die.
Aisa karke maro jo naam man shaan badh jaye duniya mein.
Do such an act before dying that your name, respect and glory is increased in the world.
Unki aulaad bane Kaurav.
The Kauravas became their children.
Rav mana surgula, kau mana kaua.
Rav means noise and kau means crow.
Sirf kauon ki tarah shorgul machate hain, kar kuch bhi nahi paate.
They simply make noise like the crows but aren't able to do anything practically.
Ye Kaurav aur Pandav ikatthe rehte hain.
These Kauravas and Pandavas stay together.
Lekin Pandav panda baap ki mat par chalte hain aur Kaurav nahi chalte.
But the Pandavas follow the directions of Panda the father, while the Kauravas don't.
Hai tu bhai bhai.
They are certainly brothers.
Abhi tumhari yuddh to bhai behno se nahi hai.
Now your battle isn't with brothers and sisters.
Tumhari yuddh to Ravan se hai.
In fact, your battle is with Ravan.
Tum to bhai behno ko to kehte ho.
You do call yourselves brothers and sisters.
Uthane ke liye kehte ho.
You say this to uplift them.
Manushya se devata banane ke liye kehte ho.
You say this to make them into deities from humans.
To baap samjhate hain desh hai sabhi deh ke sambandh tumko chhodne hain.
So the father explains that you have to leave the body along with all the relations of the body.
Ye purani duniya hai.
This is an old world.
Is purani duniya mein kitne bade bade canals aadi banati rehti.
They keep building such big canals and so on in this old world.
Kyunki pani ki kami pad jati hai.
Because of the shortage of water.
Praja bahut badh jati hai.
And a great increase of subjects, that is population.
Aur wahan to tum bahut thode rehte.
And there you are very few.
Praja bahut thodi hoti hai.
The subjects are very few.
Nadiyon mein pani bhi dher ka dher rehta hai.
Also there is a lot of water in the rivers.
Yahan to dekho nadiyan sookh jati hai.
Look here, the rivers dry up.
कौन सी नदियों की बात है?
इट इज अबाउट विच रिवर्स. समवन सेड द लिविंग रिवर्स.
चैतन्य ज्ञान नदियाँ ज्ञान सागर से बहुत दूर हुई पड़ी हैं. तो सूख जाती हैं. पानी नहीं देता.
When the living rivers of knowledge are very distant from the ocean of knowledge, they dry up and no water remains in them.
Yahan is dharti par hai 500 crore manushya.
Here on this earth there are 500 crore, that is 5 billion people.
Aur wahan sari dharti par shuru mein hote hain 9-10 lakh.
And there in the beginning 9 to 10 lakh, that is 900,000 to 1 million people exist in the whole world.
और सिर्फ भारत खंड होता है, दूसरा कोई खंड नहीं होता.
एंड ओनली द लैंड ऑफ भारत एग्जिस्ट्स एट दैट टाइम, नो अदर लैंड एग्जिस्ट्स.
तुम थोड़े ही वहाँ रहते हो.
यू ओनली अ फ्यू पीपल लिव देयर.
और तुमको कहीं जाने करने की भी दरकार नहीं होती है.
यू डोंट इवन नीड टू गो एनीवेयर और डू एनीथिंग.
यहाँ तो देखो कितना घमासान लगा पड़ा है. भाग दौड़ मारा मारी लगी पड़ी है.
लुक हियर, देयर इज सच केओस. देयर इज रनिंग अबाउट, बीटिंग एंड किलिंग.
मौसम भी यहाँ देखो कितना ऊपर नीचे होता है.
लुक हियर द वेदर ऑल्सो फ्लक्चुएट्स सो मच.
और वहाँ तो सदैव सदा बाहर मौसम रहता है.
एंड देयर द वेदर इज ऑलवेज प्लेजेंट.
पांच तत्व वहाँ कोई भी तकलीफ नहीं देते. तो यहाँ और वहाँ में कितना अंतर है.
द फाइव एलिमेंट्स डोंट गिव एनी काइंड ऑफ डिस्कम्फर्ट देयर. सो देयर इज सो मच डिफरेंस बिटवीन हियर एंड देयर.
पांच तत्व वहाँ ऑर्डर में रहते हैं.
देयर द फाइव एलिमेंट्स स्टे अंडर ऑर्डर.
और यहाँ पांच तत्व कितना घमासान मचाते हैं.
एंड हियर द फाइव एलिमेंट्स क्रिएट सच अ डिसऑर्डर.
वहाँ तो दुख का नाम नहीं.
देयर इज नो साइन ऑफ सोरो देयर.
वहाँ सदैव होती है बसंत ऋतु.
देयर इट इज ऑलवेज द सीजन ऑफ स्प्रिंग.
फिर जब देवताएं वाम मार्ग में गिरते हैं तो फिर रावण राज्य हो जाता है.
Then, when the deities fall on the left path, it becomes the kingdom of Ravan again.
ये बाम मार्ग और दायां मार्ग क्या है?
What are these left path and right path?
बाम मार्ग माने बाएं हाथ की ओर का मार्ग.
Left path means the path on the left hand.
झाड़ के चित्र में बाईं ओर कौन कौन से धर्म दिखाए गए?
In the picture of the Kalpa tree, which religions have been shown on the left side?
Islam dharma, Christian dharma, Muslim dharma, Nastikadi.
The religions of Islam, Christian, Muslim, Atheism, etc.
Ye sab hai vivichar ko badhane wale.
All these increase adultery.
Isliye inko vam margi kaha jata hai.
That is why they are called those belonging to the left path, Vam Margi.
Ulte raaste par chalne wale.
They are the ones who follow the opposite path.
Dusre raaste ko kaha jata hai Ravan Rajya.
So that path is called the kingdom of Ravan.
Panch vikaron ka janm kahan se hota hai?
Where are the five vices born from?
वाम मार्ग से या दाएं मार्ग से?
इज इट फ्रॉम दोज ऑन द लेफ्ट पाथ और द राइट पाथ?
वाम मार्गी धर्मों से होता है पांच विकारों का जन्म.
द फाइव वाइसेस आर बॉर्न फ्रॉम द रिलीजन्स ऑन द लेफ्ट पाथ.
कामी सलामी क्रोधी क्रिश्चियंस लोभी मुस्लिम.
द लस्टफुल पीपल ऑफ इस्लाम द एंग्री क्रिश्चियंस द ग्रीडी मुस्लिम्स.
और आर्य समाजी मोही जो सात धर्मों से गुजरते हुए आते हैं.
एंड द आर्य समाजी विथ अटैचमेंट एंड हु गो थ्रू ऑल द रिलीजन्स.
और अहंकारी रशियंस.
एंड द इगोटिस्टिक रशियंस.
देवताओं को वाम मार्गी नहीं कहेंगे.
द डीटीज वोंट बी कॉल्ड द वंस बिलोंगिंग टू द लेफ्ट पाथ.
दाई और जो भी धर्म है वो फिर भी देवताओं को फॉलो करने वाले.
द रिलीजन्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कल्पा ट्री एनी वे फॉलो द डीटीज.
ब्रह्मचर्य के पोषक हैं.
दे नर्चर सेलिबसी.
चाहे बौद्ध भी धर्म है चाहे संन्यास धर्म है चाहे सिख धर्म है.
Whether it is the Buddhist religion, the Sannyas religion, or the Sikh religion,
देवताओं को कहा जाता है सर्वगुण संपन्न.
The deities are called the ones complete with all the virtues.
ये दाई ओर के जो भी धर्म है विधर्मी तो है लेकिन विदेशी नहीं है भारतीय सभ्यता के पोषक है.
All the religions on the right side are indeed vidharmi, meaning those whose beliefs and practices are opposite to that set by the father but aren't videshi, meaning foreigners. They are the ones who nurture the Indian culture.
Is samay to sab asuri sampradaya.
At this time everyone is of the demonic community.
Daiyor wale bhi asuri sampradaya.
Are those on the right side also the ones belonging to the demonic community?
दाई ओर के भी आसुरी संप्रदाय के प्रभाव में आ जाते हैं.
Those on the right side also come under the influence of those of the demonic community.
बाप कहते हैं.
The father says.
ये भारतवासी भी बिल्कुल एप्स बुद्धि बन गए.
The residents of Bharatvasi have become the ones with an ape-like intellect completely.
रावण राज्य में और औरों से प्रभावित होते रहते.
They are influenced by others in the kingdom of Ravan.
ऐसे एप्स के ऊपर नाम फिर रख दिए फलाना श्री.
Then such apes have been named so and so श्री.
मुसलमानों को भी श्री श्री लगाते रहते.
They keep adding the title श्री श्री to the names of the Muslims as well.
क्रिश्चियंस को भी श्री का टाइटल दे दिए.
Christians have also been given the title श्री.
कब श्री का टाइटल देते हैं कब मिस्टर का टाइटल देते.
Sometimes they are given the title Shri and sometimes they are given the title Mr.
Shri bhul jata hai.
They forget to say Shri.
Kyunki Shri nahi to Mr. hi keh dete.
Because if not Shri they call them Mr.
Mr. akshar bhi angrezi ka hai.
The word Mr. is also an English word.
अब तो अक्सर दास अथवा मल नाम रख देते.
Now they often keep names with the title दास और मल.
मल अर्थात गंध.
मल means dirt.
दास माने दास दासी का कर्म करने वाले.
दास means those who perform deeds of servants and maids. दास दासी.
ये दास होते हैं देवताओं के पुजारी.
The servants are the worshippers of deities.
पुरुषार्थ करते करते परमत पर या मनमत पर चल पड़ते हैं.
Those who follow the opinion of others or the opinion of the mind while making purusharth, meaning spiritual effort,
तो उदास हो जाते हैं जीवन से.
They become sad with life.
और दास दासी बन पड़ते हैं.
And become servants and maids.
आजकल तो बंदरों पर भी श्री का ताज रख दिए.
Nowadays even monkeys are given the crown of श्री.
अरे श्री तो ये लक्ष्मी नारायण है ना.
अरे एक्चुअली दीज लक्ष्मी नारायण आर श्री aren't they.
तुम समझ गए हो. अभी हम तो डबल ताजधारी बनते हैं.
यू हैव अंडरस्टूड नाउ वी बिकम डबल क्राउंड.
फिर द्वापर से बनते हैं सिंगल ताजधारी.
देन फ्रॉम द कॉपर एज वी बिकम द वंस विद अ सिंगल क्राउन.
संगम युग में कौन से डबल ताजधारी.
विच आर द डबल क्राउन्स इन द कॉन्फ्लुएंस एज.
एक तो नई दुनिया की स्थापना की जिम्मेवारी का ताज उठाते हैं.
वन इज दैट वी होल्ड द क्राउन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड.
जो ताज श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाप दादा बच्चों को देते.
इट इज द क्राउन दैट द मोस्ट एलिवेटेड बाप दादा गिव्स टू द चिल्ड्रन.
और दूसरा पवित्र रहने की जिम्मेवारी भी उठाते हैं.
एंड द सेकेंड वन इज दैट वी ऑल्सो टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिमेन प्योर.
जो पवित्रता का ताज मस्तक के चारों ओर दिखाया जाता है.
That crown of purity is shown around the head.
क्यों?
Why?
शरीर के चारों ओर क्यों नहीं दिखाया जाता.
Why isn't it shown around the body?
सिर्फ मस्तक के चारों ओर क्यों दिखाया जाता है.
Why is it shown only around the head?
कहाँ की यादगार है.
When is it a memorial of? Someone said the confluence age.
संगम युग की यादगार है. ये मनसा में धारण करने की बात है.
इट इज अ मेमोरियल ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज. इट इज अबाउट असिमिलेटिंग इन द माइंड.
तन भला पवित्र है.
दो द बॉडी इज इम्प्योर.
इस पतित दुनिया में सब पतित हैं. एक भी पावन नहीं.
In this impure world, everyone is impure. Not even a single person is pure.
लेकिन मन को तो पवित्र बना सकते हैं।
But we can certainly make the mind pure, can't we?
मान लो बांधेली माताएं हैं।
Suppose there are mothers in bondage.
माता ज्ञान में चलती है, पति नहीं चलता है।
If the mother follows the path of knowledge, but her husband doesn't.
माता पवित्रता को मानती है, पति की बुद्धि में ये बात नहीं बैठती है।
The mother believes in purity, but this thing does not sit in the intellect of her husband.
तो तन से तो माता पवित्र हो सकती है।
So the mother can be impure through the body.
अगर अंदर से साफ दिल है, तो मन की पवित्रता काबिज रख सकती है।
If she has a clean heart within, then she can maintain the purity of the mind.
तन को मुर्दा बना सकती है। मन को बाप की याद में ऊपर उड़ा सकती है।
She can make her body like a corpse and make her mind fly high in the remembrance of the father.
बाप कहते हैं खास बांधेली माताओं से।
The father says especially to mothers in bondage.
विकारी सुख भोगा मन बुद्धि से तो पतित कहे जावे।
If you enjoy vicious pleasures through the mind and intellect, then you will be called impure.
अगर मन बुद्धि से विकारी सुख नहीं भोगा, कोई वासना नहीं ली, तो तुम पवित्र हो।
If you didn't enjoy vicious pleasures through the mind and intellect, you didn't take pleasure, you are pure.
अपवित्र नहीं कहा जाएगा।
You won't be called impure.
क्योंकि बाप आत्माओं से बात करते हैं।
Because the father talks to the souls.
Atma arthat man buddhi.
Soul means the mind and intellect.
To man buddhi ki stage ko uncha uthana hai.
So you have to uplift the stage of the mind and intellect.
Ye man buddhi rupi jo atma hai usme se jo vibration charo taraf phailte hain.
The vibrations that spread all around from this soul in the form of the mind and intellect.
वो मस्तक के चारों तरफ दिखाए गए।
Have been shown around the head.
ये संगम युग की यादगार है।
This is a memorial of the confluence age.
सतयुग में पवित्रता की ये निशानी देवताओं को दे दी है।
This symbol of purity has been given to the deities in the golden age.
लेकिन सतयुग और त्रेता की कोई हिस्ट्री मनुष्यों के पास नहीं।
But no history of the golden and silver ages is available to humans.
देवताएं तो सच्चे सच्चे पवित्र हैं।
Deities are truly pure.
तन से भी पवित्र होते हैं और मन बुद्धि आत्मा से भी पवित्र होते हैं।
They are pure through the body as well as the soul in the form of the mind and intellect.
यहाँ तन तो पांच सड़े हुए तत्वों का बना हुआ है।
Here the body is made of five decayed elements.
ये तन की पैदाइश ही गोमूत्र से है।
The very birth of this body has taken place through dirt. गोमूत literally means feces and urine.
आत्मा जब तक रिजुविनेट नहीं होती तब तक शरीर भी तम प्रधान बने हुए।
As long as the soul is not rejuvenated, the bodies will also be tamo pradhan, meaning dominated by darkness or ignorance.
तो तुम जान गए हो।
So you have come to know.
कि ताजधारी बनते हैं।
That you become the ones holding the crown.
फिर single ताजधारी द्वापर से बनते हैं।
And then you become the ones with a single crown from the copper age.
यहाँ पवित्र कोई नहीं है।
Here no one is pure.
मन तन से और मन बुद्धि आत्मा दोनों से पवित्र कोई नहीं है।
इट मीन्स नो वन इज प्योर थ्रू बोथ द बॉडी एंड द सोल इन द फॉर्म ऑफ द माइंड एंड इंटेलेक्ट।
क्योंकि जन्म तो फिर भी भ्रष्टाचार से लेते हैं।
बिकॉज दे आर बॉर्न थ्रू करप्ट एक्शंस भ्रष्टाचार एनीवे।
ऐसे
थ्रू व्हाट
शरीर का जन्म होता है भ्रष्ट इंद्रियों से। इसलिए भ्रष्टाचारी कहा जाता है।
द बॉडी इज बॉर्न फ्रॉम द करप्ट इंद्रिया मीनिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी यूज्ड टू परफॉर्म एक्शंस एंड द सेंस ऑर्गन्स दैट इज वाई दे आर कॉल्ड भ्रष्टाचारी मीनिंग द वंस हु परफॉर्म करप्ट एक्शंस।
और देवताओं का जन्म होता है श्रेष्ठ इंद्रियों से।
एंड द डीटीज आर बॉर्न थ्रू द एलिवेटेड इंद्रिया
ज्ञानेन्द्रियों से
थ्रू द ज्ञानेन्द्रिया मीनिंग सेंस ऑर्गन्स
इसलिए उनको श्रेष्ठाचारी कहा जाता है।
दैट इज वाई दे आर कॉल्ड श्रेष्ठाचारी मीनिंग द वंस हु परफॉर्म एलिवेटेड एक्शंस।
विकारी को भ्रष्टाचारी कहा जाता है।
अ विशियस पर्सन इज कॉल्ड भ्रष्टाचारी
जो विपरीत कार्य करते हैं।
दे आर द वंस हु परफॉर्म ऑपोजिट एक्शंस।
काय के विपरीत है?
ऑपोजिट टू व्हाट?
जो बाप ने श्रीमत दी है।
ऑपोजिट टू द श्रीमत गिवन बाय द फादर।
न दुख दो और न दुख लो।
नीदर गिव सोरो नॉर टेक सोरो।
ये भ्रष्ट इंद्रियां दुख देने वाली है, भ्रष्ट कार्य कराने वाली है।
दीज करप्ट इंद्रिया गिव सोरो दे मेक अस परफॉर्म करप्ट एक्शंस।
सतयुग में ऐसे भ्रष्टाचारी नहीं होते।
देर आंट सच भ्रष्टाचारी पीपल इन द गोल्डन एज।
बच्चे जानते हैं।
द चिल्ड्रन नो
कि सतयुग में पवित्र मार्ग था, उसको कहते हैं पवित्र प्रवृत्ति मार्ग।
दैट इट वॉज अ प्योर पाथ इन द गोल्डन एज इट इज कॉल्ड द प्योर हाउस होल्ड पाथ।
अपवित्रता का नाम निशान नहीं।
देर इज नो ट्रेस ऑफ इम्प्यूरिटी।
अभी अपवित्र हो गया।
नाउ इट हैज बिकम इम्प्योर।
अभी फिर से पवित्र श्रेष्ठाचारी दुनिया बन रही है।
नाउ द प्योर एलिवेटेड वर्ल्ड हैज टू बी मेड अगेन।
ये सृष्टि का चक्र फिरता है।
दिस वर्ल्ड साइकिल रोटेट्स।
और सृष्टि के चक्र को फिराने वाला है परम पिता परमात्मा।
एंड द वन हु रोटेट्स द वर्ल्ड साइकिल इज द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल।
जो पतित पावन कहा जाता है।
Who is called Patit Pavan, meaning the purifier of the impure.
Patiton ko pavan, ek ke siwaye koi bana nahi sakta.
Except the one, no one else can purify the impure.
Parantu Patit Pavan Parampita Paramatma bhi kehte hain.
But that purifier of the impure, the Supreme Father, Supreme Soul also says,
ki humko sharir ka aadhar lena padta hai.
We have to take the support of the body.
Kinko?
Who?
Yahan humko kiske liye kaha?
For whom was it said we?
Humko sharir ka aadhar lena padta hai.
It was said we have to take the support of the body.
Humko mane kinko?
We means who?
Shiv to ek ho gaya. Yahan to humko bola.
Shiv is just one soul. And here it was said we.
Humko mane kinko?
We means who?
Bhagavan.
Sharir ka aadhar lena padta hai.
Krishna ko aur Shiva
ko. We have to take the support of the body.
Shiva ko bhi aadhar lena padta hai.
Shiva also has to take the support of the body.
Lekin Shiva ne to san 36 mein hi aadhar liya.
But Shiv took the support in the year 1936 itself.
काय का आधार लिया?
Of what did he take the support?
पांच तत्वों के बने शरीर का आधार लिया.
He took the support of the body made of five elements.
लेकिन जिन पांच तत्वों के बने शरीर का आधार लिया वो भी.
But as regards the body made of five elements that was taken as the support also
param pita ke sath kya title joda jata hai paramatma kaha jata hai
which title is added to the supreme father param pita it is said the supreme soul paramatma
ye dono hastiyan mil kar ke ek personality banti hai.
Both these personalities combine and become one personality.
Us ek personality ko Rudra kaha jata hai.
That single personality is called Rudra.
उस रुद्र से जो ज्ञान यज्ञ रचा जाता है उसका नाम है अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ।
द यज्ञ ऑफ नॉलेज दैट इज ऑर्गेनाइज बाय दैट रुद्र इज कॉल्ड अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, मीनिंग द इम्पेरिशेबल यज्ञ दैट इज रिचुअल फायर हियर द स्पिरिचुअल फैमिली ऑफ द नॉलेज ऑफ रुद्र।
जहाँ से रुद्रमाला निकलती है,
द रुद्रमाला मीनिंग द रोजरी ऑफ रुद्र इमर्जेस फ्रॉम देयर।
रुद्रमाला सिर्फ आत्मिक स्थिति वालों की माला है।
इज द रुद्रमाला द रोजरी ऑफ ओनली दोज विद द सोल कॉन्शियस स्टेज
या साथ साथ है
और अलोंग विथ इट
आत्मा के साथ है, प्रवृत्ति किसकी है?
हु इज इन प्रवृत्ति मीनिंग कंपेनियनशिप विद द सोल,
शरीर की प्रवृत्ति
द बॉडी।
तो रुद्रमाला अकेली है या शरीर की प्रवृत्ति वालों के साथ है?
सो इज द रुद्रमाला अलोन और इन प्रवृत्ति विद दोज हैविंग अ बॉडी,
अकेली है, रुद्रमाला अपने में संपूर्ण नहीं है।
इट इज अलोन, द रुद्रमाला इज नॉट कम्प्लीट ऑन इट्स ओन।
वो भी आत्मिक स्थिति वाले बच्चे हैं, उनकी माला तो बन जाती है।
द रोजरी ऑफ ऑल द चिल्ड्रन विद द सोल कॉन्शियस स्टेज सर्टनली बिकम्स रेडी,
माला रूपी संगठन भी बन जाता है।
देयर गैदरिंग इन द फॉर्म ऑफ द रोजरी ऑल्सो बिकम्स रेडी,
लेकिन नई सृष्टि की स्थापना प्रत्यक्ष नहीं हो सकती।
बट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वर्ल्ड कैनॉट बी रिवील्ड।
क्यों?
वाई?
सृष्टि के लिए कितने चाहिए?
दो
चाहिए।
हाउ मेनी आर नीडेड फॉर द कमेंसमेंट ऑफ द वर्ल्ड? टू।
आत्मा भी चाहिए, आत्मिक स्थिति वाला भी चाहिए और
द सोल इज नीडेड दैट इज द वन विद द सोल कॉन्शियस स्टेज इज नीडेड
और पांच विकारों के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला भी चाहिए।
एंड द वन हु इनेबल्स अस टू गेन विक्ट्री ओवर द फाइव वाइसेस इज नीडेड एज वेल।
पुरुष अकेला चाहे कि पांच विकारों के ऊपर हम जीत पाले।
इफ अ मैन दैट इज मेल वॉन्ट्स टू गेन विक्ट्री ओवर द फाइव वाइसेस बाय हिमसेल्फ,
कोई माता गुरु का आधार न लेना पड़े।
एंड डजंट वॉन्ट टू टेक द सपोर्ट ऑफ एनी मदर गुरु, इट इज नॉट पॉसिबल।
क्योंकि माता होती है साकारी और बाप होता है निराकारी।
बिकॉज द मदर इज कॉर्पोरियल एंड द फादर इज इनकॉर्पोरियल।
तो निराकार और साकार दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए।
सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द इनकॉर्पोरियल वन एंड द कॉर्पोरियल वन इज नीडेड।
तो बताया कि जो परमपिता परमात्मा पतित पावन कहा जाता है वो साकार निराकार का मेल है।
सो इट वॉज सेड दैट द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल हु इज कॉल्ड द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर इज ही द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्पोरियल वन एंड द इनकॉर्पोरियल वन।
यस सिर्फ साकार या सिर्फ निराकार है?
और इज ही जस्ट कॉर्पोरियल और जस्ट इनकॉर्पोरियल?
साकार निराकार का मेल है।
ही इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द कॉर्पोरियल वन एंड द इनकॉर्पोरियल वन।
तब ही पतितों को पावन बना सकता है।
ओनली देन कैन ही प्यूरिफाई द इम्प्योर वंस।
लेकिन
बट
परमात्मा पार्टधारी जो है, हीरो पार्टधारी, वो संसार में तब ही प्रत्यक्ष हो सकता है।
द वन हु प्लेज द रोल ऑफ द सुप्रीम सोल द हीरो एक्टर कैन बी रिवील्ड इन द वर्ल्ड
जब साथ में विजयमाला की हेड हीरोइन पार्टधारी भी हो।
ओनली वेन द हेड ऑफ द विजयमाला मीनिंग द रोजरी ऑफ विक्ट्री द वन हु प्लेज द रोल ऑफ द हीरोइन इज ऑल्सो अलॉन्ग विथ हिम।
इसलिए कहा हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है।
दैट इज वाई इट वॉज सेड वी हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ द बॉडी।
आत्मा पावरफुल हो,
इफ द सोल इज पावरफुल
तो शरीर भी कैसा चाहिए, पांच तत्वों का पुतला भी कैसा चाहिए।
देन व्हाट काइंड ऑफ बॉडी इज नीडेड, व्हाट काइंड ऑफ एन एफिजी ऑफ द फाइव एलिमेंट्स इज नीडेड।
आत्मा सत्व प्रधान, तो पांच तत्वों का पुतला भी सत्व प्रधान चाहिए।
इफ द सोल इज सत्व प्रधान, मीनिंग कंसिस्टिंग इन द क्वालिटी ऑफ गुडनेस एंड प्यूरिटी, देन द एफिजी ऑफ द फाइव एलिमेंट्स शुड ऑल्सो बी सत्व प्रधान।
आत्मा पुरुष है,
द सोल इज मेल पुरुष,
और शरीर प्रकृति माता कहा जाता है।
एंड द बॉडी इज कॉल्ड मदर नेचर, प्रकृति माता।
तो कहते हैं कि हमको शरीर का आधार लेना पड़ता है।
सो ही सेज वी हैव टू टेक द सपोर्ट ऑफ द बॉडी।
शिव को भी आधार लेना पड़ता है।
शिव ऑल्सो हैज टू टेक अ सपोर्ट।
उनकी भी मजबूरी हो गई क्या?
इज इट एन ऑब्लिगेशन फॉर हिम टू।
शिव ज्योति बिंदु, जिसकी बिंदी का ही नाम है, उसकी भी मजबूरी है क्या?
शिव द पॉइंट ऑफ लाइट, द वन हुज पॉइंट इटसेल्फ हैज अ नेम, डज ही ऑल्सो हैव एन ऑब्लिगेशन।
शिव कहा जाता है कल्याणकारी को।
द वन हु इज बेनिफिशियल इज कॉल्ड शिव।
कल्याण तभी ही कर सकता है जब चैतन्य बने।
ही कैन ब्रिंग अबाउट बेनिफिट ओनली वेन ही बिकम्स लिविंग।
बिंदु बिना शरीर के जैसे जड़वत, कोई कार्य नहीं कर सकता।
विदाउट अ बॉडी द पॉइंट इज इनर्ट इन अ वे, इट कैनॉट परफॉर्म एनी टास्क।
ऐसे ही
सिमिलरली
जो आत्मिक स्थिति धारण करने वाले रुद्रमाला के मणके हैं, उनको अपना अगर समान पुरुषार्थी आधार नहीं मिलता।
इफ द बीड्स ऑफ द रुद्रमाला हु असिमिलेट द सोल कॉन्शियस स्टेज डोंट गेट अ हेल्पर हु इज अ पुरुषार्थी, मीनिंग द वन हु मेक्स स्पिरिचुअल एफर्ट ऑफ इक्वल लेवल,
तो वो विजयी नहीं हो सकते।
दे कैनॉट बिकम विक्टोरियस।
और जो नई शक्ति स्थापन होनी है, प्रत्यक्ष होनी है, वो प्रत्यक्ष नहीं हो सकती।
एंड द न्यू वर्ल्ड दैट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड, दैट हैज टू बी रिवील्ड, कैनॉट बी रिवील्ड।
बाप कहते बिना शरीर मैं मुख से शिक्षा कैसे दूंगा।
द फादर सेज हाउ विल आई गिव टीचिंग्स थ्रू द माउथ विदाउट अ बॉडी।
शरीर होगा तो मुख होगा।
इफ देर इज अ बॉडी देर विल बी अ माउथ।
प्रेरणा से कोई शिक्षा नहीं दी जाती।
टीचिंग्स आर्ट गिवन थ्रू इंस्पिरेशन।
प्रेरणा माने विचार, और तो कोई बात नहीं।
इंस्पिरेशन मीन्स थॉट, इट इज नथिंग एल्स।
भगवान प्रेरणा से कुछ भी नहीं करते।
गॉड डज नॉट डू एनीथिंग थ्रू इंस्पिरेशन।
बाप तो बच्चों को आकर के पढ़ाते हैं।
इन फैक्ट द फादर कम्स एंड टीचेस द चिल्ड्रन।
प्रेरणा से कोई पढ़ाई थोड़ी हो सकती है।
टीचिंग कैनॉट टेक प्लेस थ्रू इंस्पिरेशन।
प्रेरणा से ही अगर पढ़ाई हो जाए तो ऊपर बैठ करके ही सारी सृष्टि का निर्माण हो जाए।
इफ द स्टडीज टेक प्लेस जस्ट थ्रू इंस्पिरेशन, देन द एंटायर वर्ल्ड विल बी क्रिएटेड जस्ट बाय सिटिंग अबव, दैट इज इन द सुप्रीम अबोर्ड।
भगवान को इस शक्ति पर आने की दरकार नहीं है।
देर वोंट बी द नीड फॉर गॉड टू कम इन दिस वर्ल्ड।
सिवाय बाप के शक्ति की आज मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकते है।
एक्सेप्ट द फादर नो वन एल्स कैन एक्सप्लेन द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ द वर्ल्ड।
क्यों नहीं समझा सकते हैं?
वाई कांट दे एक्सप्लेन इट।
बाप के अलावा बाप का जो पहला पत्ता श्री कृष्ण बच्चा है वो क्यों नहीं समझा सकता।
अपार्ट फ्रॉम द फादर वाई कांट द फर्स्ट लीफ ऑफ द फादर द चाइल्ड श्री कृष्ण एक्सप्लेन दिस।
वो भी तो शक्ति के आज में आता है।
He also comes in the beginning of the world. Someone said he has 84 births.
वो भी 84 जन्म लेता है, तो उसको जो जन्म देने वाला है वो 84 जन्म नहीं लेता है, है? फिर
He too has 84 births. So, doesn't the one who gives birth to him have 84 births? Someone said, he too has 84 births. Then,
वो 84 जन्म तो लेता है.
He, that is the one who gives birth to Krishna, does have 84 births.
लेकिन जो 84 जन्मों की सृष्टि है, सृष्टि रूपी नाटक है, ड्रामा है, उसके शूटिंग काल में वो निश्चय अनिश्चय रूपी मृत्यु को कभी नहीं पाता है.
बट ही नेवर गोज थ्रू बर्थ और डेथ इन द फॉर्म ऑफ फेथ एंड डाउट इन द शूटिंग पीरियड ऑफ द वर्ल्ड द ड्रामा लाइक वर्ल्ड द ड्रामा ऑफ हिज 84 बर्थ्स.
आदि से लेकर जब से प्रत्यक्षता रूपी जन्म होता है और अंत तक अनिश्चय रूपी मृत्यु का नाम निशान नहीं.
फ्रॉम द बिगिनिंग एवर सिंस हिज बर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेवलेशन टेक्स प्लेस एंड टिल द एंड देर इज नो नेम और ट्रेस ऑफ डेथ इन द फॉर्म ऑफ डाउट इन हिम.
इसलिए भारतीय परंपरा में एक ही देवता है जिसका जन्म और मृत्यु नहीं दिखाई जाती.
That is why there is only one deity in the Indian tradition, that is mythology, whose birth and death are not shown.
क्या कहा जाता है?
What is he called?
अमर माने देवता और वो क्या है? अमरनाथ.
अमर means deity and what is he? He is Amarnath, meaning the lord of the immortal ones.
देवताओं का स्वामी है.
He is the master of the deities.
तो बाप के सिवाय कोई शक्ति के आदि मध्यंत का राज नहीं समझा सकता.
So, except the father, no one can explain the secrets of the world's beginning, middle and end.
वो दोनों ही बाप एक ही पर्सनालिटी के रूप में प्रत्यक्ष होते हैं.
Both the fathers are revealed through the same personality.
निराकारी शिव ज्योति बिंदु आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप, दोनों ही बेहद के बाप हैं.
द इनकॉर्पोरियल पॉइंट ऑफ लाइट शिव द फादर ऑफ द सोल्स एंड द फादर ऑफ द ह्यूमन वर्ल्ड बोथ आर अनलिमिटेड फादर्स.
तो जो आदि मध्यंत का ज्ञान समझाते हैं उस बाप कोई नहीं जानते.
सो पीपल डोंट नो द वेरी फादर हु एक्सप्लेन्स द नॉलेज ऑफ द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड.
कोई कह देते हैं लिंग है.
सम से दैट ही इज इन द फॉर्म ऑफ अ लिंग मीनिंग ऑब्लॉन्ग शेप.
क्या
वॉट
ये भी नहीं जानते इतना बड़ा लिंग कैसे हो सकता है.
दे डोंट इवन नो हाउ द लिंग कैन बी सो बिग.
आत्मा बिंदु और उनका बाप परमात्मा ज्योति बिंदु.
द सोल इज अ पॉइंट एंड इट्स फादर इज द सुप्रीम सोल द पॉइंट ऑफ लाइट.
उनका आकार प्रकार तो एक जैसा ही होगा या अलग अलग होगा.
सो विल देयर शेप एंड साइज बी द सेम और डिफरेंट.
एक जैसा ही होना चाहिए.
इट शुड सर्टनली बी सिमिलर.
चींटी का बाप चींटी जैसा, सांप का बाप सांप जैसा लंबा.
एन एंट्स फादर हैज द फॉर्म ऑफ एन एंट. अ स्नेक्स फादर इज लॉन्ग एज अ स्नेक.
हाथी का बाप हाथी जैसा ढील ढोल वाला.
एन एलिफेंट्स फादर हैज द सेम बेल्ट एज एन एलिफेंट.
तो बिंदी आत्मा का बाप कैसा होगा? बिंदी ही होगा ना.
सो हाउ विल द फादर ऑफ अ पॉइंट सोल बी? ही विल डेफिनेटली बी अ पॉइंट वोंट ही?
वो बिंदी बिंदी आत्माओं का बाप है.
ही इज द फादर ऑफ द पॉइंट सोल्स.
उस बिंदी बाप को भी नहीं जानते और वो बाप जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है उसको भी नहीं जानते.
पीपल डोंट नो द पॉइंट द फादर एंड दे डोंट नो द परमानेंट चैरियट इन विच दैट फादर एंटर्स ईदर.
कोई कह देते हैं लिंग है, ये किसकी निशानी है?
सम से ही इज अ लिंग. इट इज द सिंबल ऑफ वॉट
है. लिंग है तो लिंग इतना बड़ा तो होता नहीं।
इफ ही इज अ लिंग इज सर्टनली नॉट सो बिग।
शालिग्राम छोटा छोटा बनाए देते हैं, लिंग बड़ा बनाए देते हैं।
दे मेक स्मॉल शालिग्राम्स एंड अ बिग लिंग। शालिग्राम्स स्मॉल राउंड स्टोन्स कंसिडर्ड सेक्रेड इन द पाथ ऑफ भक्ति।
क्या दिखाने के लिए?
टू शो वॉट?
पूजा कोई बिंदी की होती है या बड़े रूप की है पूजा होती है?
इज अ पॉइंट वर्शिप्ड और इज अ बिगर फॉर्म वर्शिप्ड? स्टूडेंट द बिगर फॉर्म इज वर्शिप्ड।
साकार शरीर की पूजा होती है, बिंदी की पूजा नहीं होती है। बिंदी को याद किया जा सकता है।
द कॉर्पोरियल बॉडी इज वर्शिप्ड, द पॉइंट इज नॉट वर्शिप्ड, इट कैन बी रिमेम्बर्ड।
ज्ञान मार्ग में होती है याद।
देर इज रिमेम्बरेंस इन द पाथ ऑफ नॉलेज।
क्योंकि ज्ञानी सूक्ष्म बुद्धि वाले होते हैं।
बिकॉज द नॉलेजेबल वंस हैव अ सटल इंटेलेक्ट।
और भक्ति मार्ग में होती है पूजा।
एंड देर इज वर्शिप इन द पाथ ऑफ भक्ति।
क्योंकि भक्त पूजा करते हैं तो वो लिंग को पूजते हैं।
बिकॉज द डिवोटीज वर्शिप सो दे वर्शिप द लिंग।
बिंदी की पूजा नहीं हो सकती।
द पॉइंट कैनॉट बी वर्शिप्ड।
क्यों नहीं हो सकती?
वाई नॉट?
बिंदी छोटी सी, उसकी पूजा करेंगे, जल अर्पण करेंगे, फूल अर्पण करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा।
The point is small. If it is worshipped, if water and flowers are offered on it, we won't come to know at all.
तो फिर बड़े रूप की पूजा करते हैं।
So they worship the bigger form.
कौन?
Who?
भक्त लोग या ज्ञानी लोग?
Is it the devotees or the knowledgeable ones? Students, the devotees.
भक्त लोग बड़े रूप की पूजा करते हैं।
The devotees worship the bigger form.
जो ज्ञानी होते हैं,
those who are knowledgeable,
उनकी बुद्धि में तो ज्ञान है,
have the knowledge in their intellect,
कि मूल तत्व तो आत्मा है,
that the basic element is the soul,
वो अविनाशी है और शरीर तो विनाशी है,
it is imperishable while the body is perishable,
विनाशी न होता
Had it not been perishable,
तो उसकी यादगार में जो शिवलिंग बनाया गया द्वापर के आदि में, उसके बीच में हीरा जड़ा गया।
In the center of the shivling that was made in its memorial in the beginning of the copper age, a diamond was embedded. Shivling, an oblong shaped stone worshipped all over India. As a symbol of Shiv in the path of bhakti.
जो शिव ज्योति बिंदु की यादगार।
It is the memorial of Shiv, the point of light.
उसे हीरे को तोड़ने वाला नहीं तोड़ सका।
The one who wanted to break that diamond wasn't able to do so.
बड़े मान सम्मान से उसको सुरक्षित करके ले गया।
And he took it safely with great respect and regard.
और लिंग को क्या किया?
एंड वॉट डिड ही डू टू द लिंग?
गदा मार के तोड़ दिया।
ही ब्रोक इट नॉकिंग इट डाउन विद अ मेस।
अविनाशी को तोड़ा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, मारा नहीं जा सकता।
द वन हु इज इम्पेरिशेबल कैनॉट बी ब्रोकन कट और किल्ड।
विनाशी और अविनाशी।
इट इज सेड पेरिशेबल एंड इम्पेरिशेबल।
तो जानते नहीं है कि लिंग क्या चीज है जिसकी पूजा करते हैं, क्या चीज है।
सो पीपल डोंट नो वॉट द लिंग दैट इज वर्शिप्ड इज। वॉट इज इट?
लिंग है जिसकी पूजा करते हैं।
द लिंग दैट इज वर्शिप्ड।
भारतवर्ष में सबसे जास्ती मंदिर शिवलिंग के दिखाए गए हैं, तो वो क्या चीज है?
द टेम्पल्स ऑफ द शिवलिंग आर फाउंड इन द ग्रेटेस्ट नंबर इन द लैंड ऑफ भारत। सो वॉट इज इट?
है वो साकार शरीर की यादगार है जिस शरीर में मुकर्र रूप से परमात्मा सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करते हैं बिंदी के रूप में.
It is the memorial of the corporeal body in which the Supreme Soul Father enters in the form of a point in a permanent way.
वही कहते हैं अखंड ज्योति है.
Some say he is an indestructible light.
उस ज्योति को कोई खंडन नहीं कर सकता.
No one can destroy that light.
क्या इस स्थूल ज्योति की बात है या ज्ञान ज्योति की बात है?
इज इट अबाउट फिजिकल लाइट और द लाइट ऑफ नॉलेज?
वो ज्ञान ज्योति है.
ही इज द लाइट ऑफ नॉलेज.
इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, विवेकानंद कोई का भी ज्ञान उस ईश्वरीय ज्ञान ज्योति का खंडन नहीं कर सकता.
The knowledge of nobody from among Abraham, Buddha, Christ, Guru Nanak or Vivekanand can destroy that divine, that is ईश्वरीय light of knowledge.
कोई कहते हैं ब्रह्म ही ईश्वर है.
Some say that Brahm itself is God.
कौन कहते?
Who says this?
ब्राह्मण दुनिया में कौन कहते है?
Who says this in the Brahmin world?
तथाकथित ब्राह्मण क्या कहते हैं? है गीता का भगवान कौन है? ब्रह्म है.
What do the so called Brahmins say? Who is God of the Gita? Brahm.
हम ब्रह्म की गोद में लीन हो जाएंगे.
They say we will merge in the lap of Brahm.
अपनी अपनी मते हैं.
So they have their own opinions.
तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं ना?
There are philosophers, tattvajnani, those who have the knowledge of the element Brahm. Brahmajnani, aren't there?
तो ब्रह्म को ईश्वर मानने वाले क्या हुए?
So, who are those who consider Brahm to be God?
तत्वज्ञानी हुए या ब्रह्मज्ञानी हुए?
Are they tattvajnani or brahmajnani? Someone said tattvajnani.
वो भी एक तत्व है.
That is also an element.
जिसे कहते हैं ब्रह्म महत्तत्व.
It is called ब्रह्म महत्तत्व, meaning the great element ब्रह्म.
ब्रह्म महत्तत्व रहने का स्थान है.
The great element ब्रह्म is a place to reside.
शास्त्रों में बहुत गपोड़े लगाए दिए.
They have put many rumors in the scriptures.
84 लाख जन्म अगर होते तो कल्प की आयु कितनी लंबी चौड़ी हो जाती.
Had there been 84 lakh births, the age of the cycle would have been so extensive.
इतनी लंबी चौड़ी हो जाती कोई भी उसका हिसाब लगा करके नहीं बता सकता.
It would have been so extensive that no one could calculate and speak about it.
इसलिए उन मनुष्य गुरुओं ने कल्प की आयु को ही लंबा चौड़ा कर दिया.
That is why those human gurus have made the very age of the cycle lengthy.
नहीं तो कोई पूछे.
Otherwise, if someone asks them,
कि अगर तुम शिव हो हम भगवान हो तो बताओ कि हमने कितने जन्म लिए तुमने कितने जन्म लिए?
If you are शिवो हम गॉड then tell us how many births did we have and how many births did you have?
तो लाखों वर्ष की आय दे देते हैं ताकि बताने का सवाल खत्म हो जाए.
They mention the age to be lakhs of years so that the question of explaining ends.
वो शास्त्रकार तो लाखों वर्ष सत्यु की ही आयु बताए देते.
Those writers of the scriptures mention the age of the golden age itself to be lakhs of years.
सत्यु की आयु कितनी लंबी कर दी है?
They have made the age of the golden age so lengthy.
क्यों कर दी है?
Why have they done so?
कहाँ की यादगार कर दी है?
It is a memorial of when?
संगम युग में जो देवतावन का फाउंडेशन डालने के लिए बाप लंबा समय लेते हैं.
In the confluence age, the father takes a long time to lay the foundation of the DT class.
जैसे कोई भी मकान की पहली मंजिल तैयार करने में लंबा टाइम लगता है.
For example, it takes a longer time to construct the first floor of the house.
ऐसे ही सतयुग का फाउंडेशन डालने के लिए शूटिंग पीरियड लंबा हो जाता है.
Similarly, the shooting period for laying the foundation of the golden age is longer.
100 वर्ष के संगम में से 40 वर्ष लग जाते हैं.
Out of the 100 years of the confluence age, it takes 40 years.
तो शास्त्रकारों ने सतयुग की आयु बहुत लंबी दिखाई दी.
So the writers of the scriptures have mentioned the age of the golden age to be very long.
बाप कहते हैं ये सारी शक्ति चक्र ही 5000 वर्ष का.
The father says this entire world cycle itself is of 5000 years.
84 लाख अगर जन्म ले तो जन्म जितने जास्ती होंगे समय भी उतना ही जास्ती चाहिए.
If we have 84 lakh births, the more the number of births we have, the more the time will be needed for the cycle.
तो ये साथ ही सब भक्ति मार्ग के लिए.
So all these scriptures and so on are for the path of bhakti.
Then bhakti marg se durgati hoti hai.
The path of bhakti leads to degradation.
Mana durgati ke liye shastra hai.
It means the scriptures lead to degradation.
To shooting period mein kaise durgati hoti hai.
So what leads to degradation in the shooting period? Someone said the unlimited path of bhakti.
Ye bhakti marg kya?
What is the unlimited path of bhakti?
Baap kehte hain ki main jo sanmukh sunata hu usse hi sadgati hoti hai.
The father says whatever I narrate face to face, that alone brings about the true liberation, sadgati.
जो मैं सन्मुख सुनाता हूँ उसको बाद में लिखा जाता है.
वॉट एवर आई नरेट फेस टू फेस इज रिटन लेटर ऑन.
प्रिंट किया जाता है.
इट इज प्रिंटेड.
उसमें कुछ न कुछ मिक्सरिटी हो जाती है.
देर इज मिक्सचर इन इट टू सम एक्सटेंट.
जैसे दूध के भरे हुए घड़े में एक बूंद भी बिस्का चला जाए तो सारा घड़ा विषैला हो जाता है.
जस्ट लाइक If even a single drop of poison is dropped in a pot full of milk, the milk in the entire pot becomes poisonous.
तो इन शास्त्रों में जो कि मनुष्यों के लिखे हुए हैं, इनमें सब में गपोड़े भरे हुए.
So all these scriptures that have been written by human beings contain rumors.
बाप कहते हैं मैं आकर के तुमको इन सब शास्त्रों का सार सुनाता हूँ.
The father says, I come and tell you the essence of all these scriptures.
ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है.
All these are the materials of the path of bhakti.
इन शास्त्रों से कोई भी मेरे को नहीं प्राप्त कर सकता.
No one can find me through these scriptures.
चाहे वो हद के शास्त्र हो और चाहे वो बेहद के मनुष्यों के बनाए हुए शास्त्र हो.
Whether they are the limited scriptures or the unlimited scriptures prepared by human beings.
मैं जब आता हूँ सन्मुख आता हूँ तब ही सबको ले जाता हूँ.
When I come, that is when I come face to face. It is only then that I take everyone along with me.
ऐसे नहीं कि भगवान ने जो सुनाया.
It is not that whatever was narrated by God
उसको बैठ करके जो सुनाते हैं लिखते हैं छपाते हैं पढ़ करके सुनाते हैं.
इफ इट इज नरेटेड रिटन प्रिंटेड रेड आउट
या पढ़ करके प्रवचन करते हैं
और प्रीच्ड आफ्टर रीडिंग
उससे कोई की सदगति हो जाती.
देन इट ब्रिंग्स अबाउट द ट्रू लिबरेशन ऑफ समवन.
नहीं.
नो.
मैं स्वयं आकर के तुम बच्चों की सदगति करता हूँ.
I myself come and bring about the true liberation of you children.
मुझे तो बुलाते भी हैं.
I am even called.
क्या कह के बुलाते हैं? ए पतित पावन सीताराम आओ.
What do they say when they call me? O purifier of the impure सीताराम come.
जो बुलाते हैं उनकी सदगति होती है।
ओनली दोज हु कॉल मी अटेंड ट्रू लिबरेशन।
जो पतित से पावन बनते नहीं वो मेरे को बुलाते भी नहीं।
दोज हु डू नॉट बिकम प्योर फ्रॉम इम्प्योर डोंट कॉल मी ईदर।
कहते हैं
दे से
कि पावन बना करके हमको पावन दुनिया में ले जाओ।
प्यूरिफाई अस एंड टेक अस टू द प्योर वर्ल्ड।
फिर भी
स्टिल
मैं आता भी हूँ तो भी धक्के क्यों खाते रहते।
इवन दो आई कम वाई डू दे कीप सफरिंग मिसफॉर्चून।
कितने गुरुओं के धक्के खाते हैं।
दे सफर मिसफॉर्चून एट द प्लेसेस ऑफ सो मेनी गुरुज।
ढूंढने के लिए
टू फाइंड गॉड।
ये ढूंढने की भी शूटिंग कहाँ होती है।
वेयर डज द शूटिंग ऑफ द सर्चिंग ऑल्सो टेक प्लेस।
कैसे।
समवन सेड द कॉन्फ्लुएंस एज। हाउ।
ब्राह्मणों की संगमी भी दुनिया में भी ढूंढने की शूटिंग होती है।
द शूटिंग ऑफ द सर्चिंग फॉर गॉड टेक्स प्लेस इन द कॉन्फ्लुएंस एज वर्ल्ड ऑफ ब्राह्मण्स एज वेल।
पक्का निश्चय बुद्धि बन ही नहीं पाते एवरलास्टिंग तो ढूंढते रहते।
They aren't able to become the ones with an everlasting firm faithful intellect at all. So they keep searching for him.
Kitna dur dur pahadon par jaate hain.
They go to such far off places on the mountains.
Pahadon par kis liye jaate
hain? Why do they go on the mountains?
Bhagwan pahadon par baithta hai kya?
Does God sit on the mountains? Someone said no.
ब्राह्मणों की संगम युग दुनिया में कौन से पहाड़ों पर जाते
हैं। On which mountain do they go in the confluence age world of Brahmins?
Mount Abu जाते हैं। वहाँ भगवान बैठा हुआ है क्या।
They go to Mount Abu. Is God sitting there? Someone said no.
फिर क्यों जाते हैं।
Then why do they go?
जरा मूर्ति का दर्शन करने के लिए जाते हैं।
They go to see the non-living idols.
आज कल तो कितने मंदिर यूं ही खाली पड़े।
Nowadays, so many temples are simply deserted.
उन मंदिरों में कोई जाने आने वाला ही नहीं है।
No one visits them at all.
अभी तुम बच्चे ऊंचे ऊंचे बाप की बायोग्राफी को जान गए।
Now, your children have come to know the biography of the highest on high father.
बाप बच्चों को सब कुछ दे करके
The father gives everything to the children.
फिर 60 वर्ष बाद वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते।
And then sits in the vanprastha stage, meaning the stage of retirement after 60 years.
क्या?
What?
सब कुछ दे करके।
He gives everything.
60 वर्ष के बाद।
And after 60 years.
वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं। क्या मतलब हुआ?
Sits in the vanprastha stage. What does it mean?
Vani se parichar.
Someone said he goes beyond speech.
Vani se.
वो 60 वर्ष के बाद का टाइम कौन सा हुआ?
What is the time after 60 years?
कब बैठ जाते हैं वानप्रस्थ अवस्था?
When does the father sit in the vanprastha stage? Someone said in 1976.
76 में वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं कि और ही टीचर के रूप में दंडन आते हैं।
Does he sit in the vanprastha stage in 1976 or does he become even more active in the form of the teacher?
बैठेंगे
अभी।
Someone said 60 years after 76.
76 से 60 वर्ष के बाद।
60 years after 76.
2036.
Someone said in 2036.
36.
36.
36. 36. Or 25.
36 and 25.
कितने हुए?
How much does it come to after adding it?
36 है।
और 24 या 25 कितने हुए?
36 एंड 24 और 25 हाउ मच डज इट कम टू?
60 इयर्स हुए ना?
इट इज 60 इयर्स इजंट इट?
तो वानप्रस्थ अवस्था में बैठ जाते हैं या नहीं?
सो डज द फादर सिट इन द वानप्रस्थ स्टेज और नॉट?
बैठ जाते हैं.
ही डज.
माना जब तक जीना है तब तक पीना है.
इट मीन्स अंटिल यू आर अलाइव दैट इज बॉडी कॉन्शियस यू हैव टू ड्रिंक द वॉटर ऑफ नॉलेज.
जो नई दुनिया तैयार होगी 9 लाख की, वो 9 लाख हाथ में जब तक उनका संगठन प्रैक्टिकल में तैयार न हो जाए.
अंटिल द गैदरिंग ऑफ 9 लाख दैट इज 900,000 सोल्स हु फॉर्म द न्यू वर्ल्ड बिकम्स रेडी इन अ प्रैक्टिकल वे.
तब तक बाप बच्चों को पढ़ाते.
द फादर टीचेस द चिल्ड्रन.
शिक्षा देते हैं.
ही गिव्स देम टीचिंग्स.
उसके बाद जो कुछ बाप की प्रॉपर्टी है मुक्ति और जीवन मुक्ति की, वो नंबर वार सब बच्चों को दे करके जाते हैं.
आफ्टर दैट द फादर गिव्स हिज प्रॉपर्टी ऑफ मुक्ति एंड जीवन मुक्ति मीनिंग लिबरेशन एंड लिबरेशन इन लाइफ टू ऑल द चिल्ड्रन नंबर वाइज एंड देन गोज नंबर वाइज टू अ ग्रेटर और अ लेसर एक्सटेंट अकॉर्डिंग टू देयर पुरुषार्थ मीनिंग स्पिरिचुअल एफर्ट.
इतने बच्चे हुए.
हाउ मेनी चिल्ड्रन आर देयर?
9,16,108 बच्चे हैं.
देर आर 9,16,108 चिल्ड्रन.
जो बाप से डायरेक्ट प्राप्ति करते
हु रिसीव द अटेनमेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम द फादर.
कोई तो इसी शरीर से प्राप्ति करते हैं.
सम रिसीव अटेनमेंट्स थ्रू दिस वेरी बॉडी.
और कोई उस शरीर में प्रवेश करके प्राप्ति करते
हैं. एंड सम रिसीव अटेनमेंट्स आफ्टर एंटरिंग दोज बॉडीज.
या तो बुद्ध रूपी पेट में प्रवेश करके प्राप्ति करते हैं या तो स्थूल पेट में गर्भ जन्म लेकर के.
ईदर द एंटर द वूम लाइक इंटेलेक्ट एंड रिसीव अटेनमेंट्स और आफ्टर बीइंग बॉर्न थ्रू द फिजिकल वूम.
गर्भ होता है ना, गर्भ जेल होता है या गर्भ महल होता है?
देर इज द वूम इजंट देर. इज इट अ जेल लाइक वूम और अ पैलेस लाइक वूम?
उस समय गर्भ महल होता है.
एट दैट टाइम इट इज द पैलेस लाइक वूम.
उस गर्भ महल से जन्म लेकर के प्रैक्टिकल बाप से प्रैक्टिकल स्वर्ग के वर्ष की प्राप्ति करते.
आफ्टर बीइंग बॉर्न थ्रू दैट पैलेस लाइक वूम दे रिसीव द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन इन अ प्रैक्टिकल वे फ्रॉम द फादर इन प्रैक्टिस.
तो ये रस्म अभी की है.
सो इट इज द कस्टम ऑफ दिस टाइम.
क्या?
वॉट?
कि द्वापर युग में माँ बाप जब 7 साल के होते हैं तो वानप्रस्थ अवस्था में चले जाते हैं.
द कस्टम दैट इन द कॉपर एज व्हेन द पेरेंट्स आर 60 इयर्स ओल्ड दे गो इनटू द वानप्रस्थ स्टेज.
ये रस्म रिवाज कहाँ की हुई?
दीज कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस आर ऑफ व्हेन?
संगम युग में बाप जैसा करते हैं भारतवर्ष में भक्त लोग उसी को फॉलो करते हैं.
वॉट एवर द फादर डज इन द कॉन्फ्लुएंस एज द डिवोटीज कीप फॉलोइंग द सेम इन द लैंड ऑफ इंडिया.
त्योहार भी सभी इसी समय के हैं.
ऑल द फेस्टिवल्स आर ऑल्सो द मेमोरियल्स ऑफ दिस टाइम.
तुम जानते हो कि हम अब संगम युग पर खड़े हुए.
यू नो दैट नाउ वी आर स्टैंडिंग इन द कॉन्फ्लुएंस एज.
रात पूरी होगी तो फिर दिन शुरू होगा.
When the night is over, the day will begin.
पूरी रात खलास होगी तो पूरा पूरा दिन निकल आएगा.
When the night ends completely, there will be complete day.
अभी तो घोर अंधेरा है.
Right now, there is extreme darkness.
इस समय की बात बताई.
About when was it said?
67 में बोला अभी तो घोर अंधेरा है.
It was said in 67. Right now there is extreme darkness.
घोर अंधेरे में काहे की रोशनी होती है.
देयर इज द लाइट ऑफ व्हाट इन एक्सट्रीम डार्कनेस.
चंद्रमा और सितारों की रोशनी होती है.
देयर इज द लाइट ऑफ द मून एंड द स्टार्स.
तो तुम बच्चे जानते हो अभी घोर अंधेरा है.
सो यू चिल्ड्रन नो दैट नाउ देयर इज एक्सट्रीम डार्कनेस.
तो तुम जानते हो तो तुम्हें ये मानना चाहिए.
सो व्हेन यू नो दिस यू शुड एक्सेप्ट दिस.
इस अज्ञान अंधारे में कहीं ऐसा न हो कि हमारी कोई के ऊपर कुदस्ती चली जावे.
इट शुड नॉट हैपन दैट इन दिस डार्कनेस ऑफ इग्नोरेंस वी हैव एन इविल लुक कुदृष्टि टुवर्ड्स समवन.
अगर कुदृष्टि जाती है तो हम भी कहाँ हैं? घोर अंधेरे में हैं. ओम शांति.
इफ वी हैव एन इविल लुक टुवर्ड्स समवन वेर आर वी टू वी आर इन एक्सट्रीम डार्कनेस. ओम शांति.
ये है नया अनुभव.
दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस
जो और कोई भी संसार में सुनाई नहीं सकता.
दैट कैनॉट बी नरेटेड बाई एनी वन एल्स इन द वर्ल्ड.
पहले पहले सुनाना होता है कि हम रचयिता बाप और उनकी रचना के आदि मध्यंत को जान गए हैं.
फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नरेट दैट वी गॉट टू नो द बिगिनिंग द मिडल एंड द एंड ऑफ द क्रिएटर फादर एंड हिज क्रिएशन.
हम जान गए हैं इसलिए हम आस्तिक बन गए.
एज वी गॉट टू नो इट वी हैव बिकम थीस्ट्स.
सच्ची आस्था वाले हम हैं.
वी आर द वंस विथ ट्रू फेथ.
क्योंकि सच्चाई के ऊपर हमको आस्था है.
बिकॉज वी हैव फेथ ऑन ट्रूथ.
दुनिया को सच्चाई का पता ही नहीं है.
द वर्ल्ड डजंट नो अबाउट द ट्रूथ एट ऑल.
तो आस्था और अनास्था का सवाल ही पैदा नहीं होता.
सो द क्वेश्चन ऑफ हैविंग फेथ एंड डिस्ट्रस्ट डजंट अराइज एट ऑल.
या कहें कि सारी दुनिया नास्तिक है और हम आस्तिक हैं.
और एल्स वी कैन से दैट द पीपल इन द होल वर्ल्ड आर एथिस्ट एंड वी आर थीस्ट्स.
बाप ने हमको त्रिकालदर्शी बनाया है.
द फादर हैज मेड अस त्रिकालदर्शी मीनिंग द वन हु नोज द थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम.
हम इस सत्य के आदि को भी जानते हैं मध्य को भी जानते हैं और अब अंत को भी जान गए.
वी नो अबाउट द बिगिनिंग एज वेल एज द मिडल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड नाउ वी हैव कम टू नो अबाउट द एंड टू.
वो भक्त बिचारे समझते हैं कि गीता एपिसोड द्वापर में हुआ.
दोज पुअर डिवोटीज थिंक दैट द एपिसोड ऑफ द गीता हैपेंड इन द कॉपर एज.
कृष्ण को कहाँ डाल दिया है? द्वापर में डाल दिया है.
वेयर हैव दे मेंशन्ड कृष्णा टू एग्जिस्ट? इन द कॉपर एज.
लेकिन हम समझते हैं ये गीता एपिसोड कहाँ की बात है.
बट इट इज वी हु अंडरस्टैंड अबाउट वेन दिस एपिसोड ऑफ द गीता इज.
संगम युग की असल यादगार है जिस पॉइंट पर कलयुग का अंत और सतयुग का आदि होता है.
एक्चुअली इट इज द मेमोरियल ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज द पॉइंट वेन द आयरन एज एंड्स एंड द गोल्डन एज बिगिन्स.
द्वापर में कष्ट नहीं आता.
कृष्णा डज नॉट कम इन द कॉपर एज.
कृष्ण तो द्वापर युग की शूटिंग में आता है.
इन फैक्ट ही कम्स इन द शूटिंग ऑफ द कॉपर एज.
क्या?
वॉट?
त्रेता में भगवान नहीं आता.
गॉड डजंट कम इन द सिल्वर एज.
कहाँ आता है?
वेन डज ही कम?
राम तो त्रेता युग के आदि में माना सतयुग की शूटिंग का अंत और त्रेता युग की शूटिंग की आदि होती है तब आता है.
इन फैक्ट राम कम्स इन द बिगिनिंग ऑफ द सिल्वर एज दैट इज ही कम्स व्हेन इट इज द एंड ऑफ द शूटिंग ऑफ द गोल्डन एज एंड द बिगिनिंग ऑफ द शूटिंग ऑफ द सिल्वर एज.
राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है.
द फादर इज कॉल्ड राम एंड द चाइल्ड इज कॉल्ड कृष्णा.
बाप का जन्म पहले या बच्चे का जन्म पहले?
इज द फादर बॉर्न फर्स्ट और इज द चाइल्ड बॉर्न फर्स्ट?
बाप पहले प्रत्यक्ष होता है और बच्चा बाद में प्रत्यक्ष होता है।
द फादर इज रिवील्ड फर्स्ट एंड द चाइल्ड इज रिवील्ड लेटर।
लेकिन राम बाप जिसे कहा जाता है उसका भी कोई बाप है क्या?
बट डज द वन हु इज कॉल्ड द फादर राम ऑल्सो हैव अ फादर? समवन सेड ही हैज।
कौन है?
हु इज इट?
राम बाप का बाप भी शिव बाप है।
द फादर ऑफ इवन द फादर राम इज द फादर शिव।
तो शिव बाप पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए या राम बाप पहले प्रत्यक्ष होना चाहिए?
सो शुड द फादर शिव बी रिवील्ड फर्स्ट और शुड द फादर राम बी रिवील्ड फर्स्ट?
शिव जो इस शक्ति का मनुष्य शक्ति का पिता है उसका भी बाप है।
शिव इज द फादर ऑफ इवन द फादर ऑफ दिस ह्यूमन वर्ल्ड।
तो पहले प्रत्यक्ष कौन होना चाहिए?
सो हु शुड बी रिवील्ड फर्स्ट?
पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म कौन लेता है?
Who is born in the form of revelation first?
शिव लेता है या राम लेता है या कृष्ण लेता है?
Is it शिव राम और कृष्णा?
शिव का जन्म पहले होना चाहिए।
शिव शुड बी बॉर्न फर्स्ट।
तो बाप का प्रत्यक्षता वर्ष बाप दादा ने घोषित किया क्या?
So बाप दादा अनाउंस्ड द ईयर ऑफ रेवलेशन ऑफ द फादर। वॉट?
76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष।
द ईयर ऑफ रेवलेशन ऑफ द फादर इज 76।
अब चूंकि निराकार बाप साकार बाप के बगैर प्रत्यक्ष नहीं हो सकता।
नाउ सिंस द इनकॉर्पोरियल फादर कैनॉट बी रिवील्ड विदाउट द कॉर्पोरियल फादर,
इसलिए त्रेता युग में राम जरूर चाहिए।
राम इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड इन द सिल्वर एज।
तो त्रेता युगी शूटिंग राम के द्वारा शुरुआत दिखाई दी।
सो द शूटिंग ऑफ द सिल्वर एज हैज बीन शोन टू हैव स्टार्टेड थ्रू राम।
और शिव की सोल जो बाप के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है।
एंड द सोल ऑफ शिव दैट इज रिवील्ड इन द फॉर्म ऑफ द फादर इन द वर्ल्ड।
कौन से संसार में?
इन विच वर्ल्ड?
ब्राह्मणों के संसार।
इन द वर्ल्ड ऑफ द ब्राह्मिन्स।
ब्राह्मणों के संसार में भी सब ब्राह्मणों के बीच प्रत्यक्ष होती है या कोई विशेष ब्राह्मण होते हैं?
इवन इन द ब्राह्मिन वर्ल्ड इज ही रिवील्ड अमंग ऑल द ब्राह्मिन्स और आर देयर सम स्पेशल ब्राह्मिन्स?
विशेष ब्राह्मणों का शास्त्रों में नाम रख दिया है जो ब्रह्मा के पहले चार पुत्र हैं, सनत सनातन सनंदन सनत कुमार।
द स्पेशल ब्राह्मिन्स आर नेम्ड इन द स्क्रिप्चर्स सनत सनातन सनंदन एंड सनत कुमार, द फर्स्ट फोर सन्स ऑफ ब्रह्मा।
उनमें जो सबसे छोटे थे लेकिन ज्ञान में सबसे तीखे थे उन सनत कुमार के द्वारा ये जन्म दिखाया जाता है।
दिस बर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेवलेशन इज शोन थ्रू सनत कुमार द यंगेस्ट बट द शार्पेस्ट इन नॉलेज अमंग देम।
बाप कहते हैं तो देखो मैं द्वापर युग में कैसे आकर के पतितों को पावन बना करके राजयोग सिखा करके जाऊंगा।
द फादर सेज सो लुक हाउ विल आई कम इन द कॉपर एज प्यूरिफाई द इम्प्योर टीच राजयोग एंड देन गो।
द्वापर में तो दो पुर हो गई।
इन द कॉपर एज देर आर टू अबोर्ड्स।
बाप का पुर भी है और बच्चा भी जन्म ले लेता है।
देर इज द अबोर्ड ऑफ द फादर एंड द चाइल्ड इज ऑल्सो बॉर्न।
ब्रॉड ड्रामा की बात है या शूटिंग पीरियड की बात है?
इज इट अबाउट द ब्रॉड ड्रामा और द शूटिंग पीरियड?
शूटिंग पीरियड में जब द्वापर युग शूटिंग काम तो होता है।
इन द शूटिंग पीरियड व्हेन इट इज द एंड ऑफ द शूटिंग ऑफ द कॉपर एज।
तो सन 98 में
इन द ईयर 98
जो कृष्ण बच्चा है वो 15 अगस्त जन्माष्टमी के दिन जेल से प्रत्यक्ष हो जाता है।
द चाइल्ड कृष्णा इज रिवील्ड फ्रॉम द प्रिजन ऑन द 15 अगस्त द डे ऑफ जन्माष्टमी दैट इज द डे सेलिब्रेटेड एज द बर्थ ऑफ कृष्णा।
कंसी जरासंध जी उसे जेल में डाल देते हैं।
कंसी जरासंध पुट हिम इन जेल। कंसी जरासंध विलनस कैरेक्टर्स इन द एपिक महाभारत।
ये है विकारों की जेल।
दिस इज द जेल ऑफ द वाइसेस।
स्थूल जेल की बात नहीं है।
इट इज नॉट अबाउट द फिजिकल जेल।
उन कंसी जरासंधियों ने पहले भी कृष्ण जैसे 7 बच्चों को विकारों की जेल में डाला था।
अर्लियर ऑल्सो दोस कंसी जरासिंधीज हैड पुट 7 चिल्ड्रन लाइक कृष्णा इन द जेल ऑफ द वाइसेस।
कौन से 7 बच्चे हैं वो?
हु आर दोस 7 चिल्ड्रन?
जो सत्युग में नारायण बनने वाली आत्माएं हैं।
द वंस हु बिकम नारायण इन द गोल्डन एज।
वो कंस की जेल में पूरी तरह कोस ली जाती है।
दे आर कम्प्लीटली अब्यूज्ड इन द जेल ऑफ कंस।
अपनी अहम आत्मा को भूल जाती है।
दे फॉरगेट देयर सोल।
और कंस के पंजे में अच्छी तरह फंस जाती है।
एंड आर कम्प्लीटली ट्रैप्ड इन द क्लचेस ऑफ कंस।
लेकिन कृष्ण बच्चा किसी तरह शास्त्रों में दिखाया है कि बच जाता है।
बट इट हैज बीन शोन इन द स्क्रिप्चर्स दैट द चाइल्ड कृष्णा इज समहाउ सेव्ड।
तो दिखाते हैं कृष्ण का जन्म जेल से हुआ।
सो इट इज शोन दैट कृष्णा वॉज बॉर्न इन जेल।
अर्थात जेल से उसकी स्वतंत्रता हो गई।
मीनिंग ही वॉज फ्रीड फ्रॉम जेल।
कब?
वेन?
जन्माष्टमी के दिन।
ऑन द डे ऑफ जन्माष्टमी
उसकी यादगार में भारतवर्ष में स्वतंत्रता दिवस मनाने लगे।
पीपल स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे इन इट्स मेमोरियल इन द लैंड ऑफ भारत।
तो शास्त्रों में दिखाई दिया।
सो इट हैज बीन शोन इन द स्क्रिप्चर्स
कि कृष्ण का जन्म कंस की जेल से होता है।
दैट कृष्णा वॉज बॉर्न इन द जेल ऑफ कंस।
कंस की जेल से जन्म लेने के बाद
आफ्टर बीइंग बॉर्न इन द जेल ऑफ कंस
यमुना नदी से उसे क्रॉस करना पड़ता है।
ही हैड टू क्रॉस द रिवर यमुना
जहाँ भिकारी सर्प कालिया नाग रहता है।
वेयर द विशियस स्नेक द स्नेक कालिया रिसाइडेड।
तो क्रॉस कर जाता है या डूब जाता है?
सो डिड ही क्रॉस इट और डिड ही ड्राउन?
क्रॉस कर जाता है।
ही क्रॉस्ड इट
क्योंकि तुम बच्चे त्रिकालदर्शी बन चुके हो।
बिकॉज यू चिल्ड्रन हैव बिकम त्रिकालदर्शी।
वो बेचारे समझते हैं गीता एपिसोड द्वापर में हुआ।
दोज पुअर वंस थिंक दैट द एपिसोड ऑफ द गीता हैपेंड इन द कॉपर एज।
द्वापर में नहीं हुआ, द्वापर युगी शूटिंग में हुआ।
इट डिडंट हैपन इन द कॉपर एज बट इन द शूटिंग ऑफ द कॉपर एज।
बाप कहते हैं द्वापर में पतित पावन आकर के राजयोग कैसे सिखावेंगे?
द फादर सेज हाउ विल द प्यूरिफायर ऑफ द इम्प्योर कम एंड टीच राजयोग इन द कॉपर एज।
कैसे सिखावेंगे?
हाउ विल ही टीच?
कैसे का जवाब क्या हुआ?
वॉट इज द आंसर टू हाउ?
अरे बाप बाप के रूप में जब विकारों के ऊपर विजय प्राप्त किया हुआ हो तभी तो दूसरों को विजय प्राप्त कराना सिखा देगा।
अरे व्हेन द फादर इन द फॉर्म ऑफ द फादर हिमसेल्फ इज एवर विक्टोरियस ओवर द वाइसेस ओनली देन विल ही टीच अदर्स टू गेन विक्ट्री ओवर द वाइसेस।
खुद ही विकारी दुनिया में फंस जाए पतित बनने लगे।
इफ ही हिमसेल्फ बिकम्स ट्रैप्ड इन द विशियस वर्ल्ड एंड बिकम्स इम्प्योर
तो दूसरों को भी पतित बनावेगा या पावन बनावेगा?
देन विल ही मेक अदर्स ऑल्सो इम्प्योर और प्योर
दूसरे भी पतित बनेंगे।
द अदर्स विल ऑल्सो बिकम इम्प्योर।
बाप कहते हैं मुझे अपन को बाप को अपने बाप को याद करो।
द फादर सेज रिमेम्बर मी द फादर योर फादर।
एक अज भूल से राजाई चली जाती है।
द किंगशिप इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ जस्ट दिस मिस्टेक।
कौन सी बुक? गीता का भगवान कौन है?
विच मिस्टेक, हु इज गॉड ऑफ द गीता?
उन्होंने गीता का भगवान कृष्ण को समझ लिया।
दे हैव कंसिडर्ड कृष्णा एज गॉड ऑफ द गीता।
लेकिन वास्तव में गीता का भगवान राम बाप, जिस मुकर रथ में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, वो ही कहा जाता है।
बट एक्चुअली द फादर राम, द परमानेंट चैरियट इन विच द सुप्रीम सोल शिव एंटर्स, हिमसेल्फ इज कॉल्ड गॉड ऑफ द गीता।
कृष्ण तो बच्चा है।
कृष्णा इज इंडीड अ चाइल्ड।
जो प्यारा बच्चा होता है, पहलौटी का बच्चा होता है।
द चाइल्ड हु इज डियर इज द फर्स्ट चाइल्ड।
उसे माता पिता बहुत प्यार देते हैं।
द पेरेंट्स लव हिम अलॉट।
बड़े बच्चे के ऊपर माँ बाप की आस रहती है।
द पेरेंट्स हैव होप्स फॉर द एल्डर चाइल्ड।
तो कृष्ण बच्चा अर्थात ज्ञान चंद्रमा सर माथे पर विराजमान होकर रहता है।
सो द चाइल्ड कृष्णा मीनिंग द मून ऑफ नॉलेज सिट्स ऑन द फोरहेड।
बच्चों में बाप की उम्मीद होती है।
द फादर हैज होप्स फॉर द चिल्ड्रन।
बच्चे के लिए बाप का जितना प्यार होता है, उतना प्यार और कोई का नहीं हो सकता। और ये तो है बेहद का बाप।
नो वन एल्स कैन हैव एज मच लव फॉर द चाइल्ड एज द फादर हैज, एंड दिस इज द अनलिमिटेड फादर।
तो बाप कहते हैं इस एक अज भूल से सारा ड्रामा बिगड़ गया।
सो द फादर सेज दैट द कम्प्लीट ड्रामा हैज बीन स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ जस्ट दिस वन मिस्टेक।
अब ये एक भूल अगर सुधारेंगे,
नाउ इफ दिस वन मिस्टेक इज करेक्टेड,
तो सारा ड्रामा सुधर जाएगा।
देन द कम्प्लीट ड्रामा विल बी करेक्टेड।
क्या भूल? गीता का भगवान कृष्ण को बनाई दिया।
विच मिस्टेक? दे हैव मेड कृष्णा गॉड ऑफ द गीता।
गीता में कृष्ण का नाम डालने से सारी गीता खंडित हो गई।
द कम्प्लीट गीता हैज बीन रूइंड बिकॉज ऑफ इंसर्टिंग द नेम ऑफ कृष्णा।
इस समय पूरी की पूरी गीता खंडित हुई पड़ी है।
एट दिस टाइम द कम्प्लीट गीता हैज बीन रूइंड।
खंडित गीता जब सच्ची गीता बनती है तो सच खंड की स्थापना हो जाती है।
When the ruined Gita becomes the true Gita, the land of truth is established.
Om Shanti.
Om Shanti.